ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम अध्याय संस्कंद संख्या 6 अध्याय संख्या 11 श्लोक संख्या 25 मेरे पीछे दोहराइए। ना नाक पृष्ठम ना च पारमेष्ट्यम ना सार्वभौमम ना रसाधिपत्यम न योग सिद्धि आपोन भावम वा समंजस त्वा विरहय कांक्षे नानाक पृष्ठं न च पारमेष्टयम् न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम् न योगसिद्धिर्पुनर्भवं वा समञ्जस्त्वा विरहय एकांक्षे नानाक पृष्ठं न च पारमेष्टयम् न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम् न योगसिद्धि पुनर्भवं वा समञ्जस्त्वा विरहय एकांक्षे न नहीं नाक पृष्ठम स्वर्गलोक या ध्रुवलोक ना 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 तो च भी पारमेष्टयम जिस लोक में ब्रह्मा रहते हैं ना ना तो सार्वभौमम समस्त पृथ्वी लोकों का एकाधिपत्य ना नहीं रसाधिपत्यम अधोलोकों का स्वामित्व ना नहीं योग सिद्धि 8 प्रकार की यौगिक शक्तियां अनिमा लघिमा महिमा आदि अपुन भवम पुनर्जन्म से छुटकारा वा अथवा समंजस हे समस्त अवसरों के स्रोत्र आप तारों होना चाहिए था त्वा तुमसे विरहय से पृथक किया हुआ कांक्षे कामना करता हूं। इसके अनुवाद में श्री प्रभुपाद लिखते हैं श्री प्रभुपाद की हे समस्त सौभाग्य के स्रोत भगवान मुझे ना तो ध्रुवलोक में ना स्वर्ग में अथवा ब्रह्मलोक में सुख भोगने की इच्छा है और ना ही मैं समस्त पृथ्वी लोकों अथवा अधोलोकों का परम अधिपति बनना चाहता हूं। मैं योग शक्तियों का स्वामी भी नहीं बनना चाहता ना ही आपके चरण कमलों को त्याग कर मोक्ष की ही कामना करता हूं। इसके तात्पर्य में श्री प्रभुपाद लिखते हैं शुद्ध भक्त कभी भी भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा करके भौतिक सौभाग्य की इच्छा नहीं करता। वे तो भगवान तथा उनके पार्षदों की निरंतर संगति में रहकर भगवान की प्रेममयी सेवा में लगा रहना चाहता है। जैसा कि पिछले श्लोक में वर्णन हुआ है दासानुदासो भवितास्मि। इसकी पुष्टि नरोत्तम दास ठाकुर ने की है तांदेर चरण सेवी भक्त सनेवास जन्मे जन्मे है यही अभिलाष। शुद्ध भक्त की यही अभिलाषा रहती है कि वे भक्तों की संगति में रहकर भगवान तथा उनके दासानुदासों की सेवा करता रहे। हरे कृष्ण। हे समस्त सौभाग्य के स्रोत भगवान मुझे ना तो ध्रुव लोक में ना स्वर्ग में अथवा ब्रह्म लोक में सुख भोगने की इच्छा है। मैं समस्त पृथ्वी लोगों अथवा अधोलोकों का परम अधिपति बनना चाहता हूं। मैं योग शक्तियों का स्वामी भी नहीं बनना चाहता ना ही आपके चरण कमलों को त्याग कर मोक्ष की ही कामना करता हूं। यहां पर सुंदर वर्णन हो रहा है कि डिजायर क्या होनी चाहिए, क्या कामना क्या होनी चाहिए। तो यहां जो है वत्रासुर कह रहा है कि मैं ध्रुवलोक, स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, पृथ्वीलोक, अधोलोक, मतलब जितने भी यहां भुवन दिखाई दे रहे हैं, जितने भी भुवन उपस्थित हैं, मैं किसी का भी स्वामी नहीं बनना चाहता। पर मैं चाहता क्या हूं? व्हाट इज माई डिजायर? मेरी डिजायर है कि आपके चरण कमलों की सेवा से मेरा साथ एक पल एक क्षण के लिए भी ना छूटे। मीन्स मैं 100% अपने आप को आपके चरण कमलों के स्मरण, आपके चरण कमलों की सेवा में एनग्रॉस करना चाहता हूं, इन्वॉल्व करना चाहता हूं, अपने आप को उसमें 100% इम्बाइब कर देना चाहता हूं। मतलब मैं एक क्षण के लिए भी मेरे से आपके चरण कमलों का स्मरण छूटना नहीं चाहिए। यहां जो है प्रभुपाद जी बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, शुद्ध भक्त कभी कभी भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा करके भौतिक सौभाग्य की इच्छा नहीं करता। तो व्हाट इज दैट दिव्य प्रेममय सेवा? प्रेममय सेवा तो हो गई, दिव्य प्रेममय सेवा क्या है? और प्रेममय सेवा में और दिव्य प्रेम और सेवा में, प्रेममय सेवा में और दिव्य प्रेममय सेवा में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस? क्या फर्क है इसके अंदर? सेवा करना का अर्थ क्या है? व्हाट इज सेवा? सेवा इज कि जिसके प्रति सेवा की जा रही है उसके आदेश का पालन करना। मैं आपकी सेवा करता हूं तो मेरा काम क्या है? कि आप आदेश देंगे, मैं उसका पालन करूंगा। यू आर द इंस्ट्रक्टिंग पर्सन, आई एम द फॉलोइंग पर्सन। आप कहते रहेंगे, मैं उसकी पूरा करता रहूंगा, मैं आपकी सेवा कर रहा हूं। अब इसमें जो है बात आती है कि प्रेममयी सेवा क्या है? प्रेममयी सेवा मतलब जो सेवा प्रेम से करी जाए, आपके आदेश का पालन हो रहा है परंतु आदेश का पालन करने में मैं हृदय से उसके प्रति इन्वॉल्व हूं, मजबूरी में नहीं, नॉट अंडर कंपल्शन। एक श्रद्धा हमने जैसे पिछली बार चर्चा करी थी कि स्वाभाविकी और बलात्पादिका, इसी तरह जो सेवा है अब स्वाभाविक, आप नेचुरली भगवान के प्रति या किसी के प्रति आकर्षित होकर उसकी सेवा करने में लग जाते हैं, उसमें आप किसी तरीके का इंतु किंतु परंतु लेकिन बट वगैरह कुछ नहीं लगाते। जो ऐसा आदेश दिया गया है उसको प्रेम सहित स्वीकार करके प्रेम सहित उसका पालन कर देते हैं। यस, नो ऑब्जेक्शंस, नो सेकेंड थॉट्स। दूसरी स्थिति में आप सेवा कर तो रहे हैं और आप समझते हैं कि सेवा नहीं करूंगा तो टेंशन आ जाएगी, परेशानी आ जाएगी, मजबूरी आ जाएगी, उसके मजबूरी के अंतर्गत आप सेवा कर रहे हैं। अगर सेवा नहीं करूंगा तो बुरा मना जाएंगे, सेवा नहीं करूंगा तो ये नहीं मिलेगा, सेवा नहीं करूंगा तो उनकी नजरों में डाउन हो जाऊंगा, वगैरह वगैरह वगैरह। आपके पास एक कंपल्शन है, आप उस कंपल्शन के अंडर सेवा में लगते हैं, एक मजबूरी महसूस होती है, उस मजबूरी के अंतर्गत आप जो है सेवा में लगते हैं। इसका मतलब है आपकी सेवा प्रेममयी नहीं। अब दिव्य एक और शब्द हो गया, दिव्य प्रेममयी सेवा। सो दिव्य क्या है? व्हाट इज दिव्यता इन दैट? आप भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा करते हैं। देखिए भगवान छठे अध्याय के अंदर बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, तो एक लाइन आपको पढ़ के सुनाता हूं। रूपा जी कहते हैं छठे अध्याय के 47वें श्लोक के अंदर, और समस्त योगियों में जो योगी अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता। प्रेमा भक्ति से काम नहीं चला, क्या शब्द इस्तेमाल किए, दिव्य प्रेमा भक्ति। वह योग में मुझसे अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है, यही मेरा मत। तो रूपा जी कई जगह पर जो है ट्रांसेंडेंटल अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस कहते हैं। तो व्हाट इज दैट अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस, व्हाट इज दैट दिव्य प्रेमा भक्ति, व्हाट इज दैट दिव्य प्रेममयी सेवा। दिव्य प्रेममयी सेवा, दिव्य प्रेमा भक्ति, सेम थिंग, भक्ति मीन सेवा। तो व्हाट इज दैट दिव्य प्रेममयी सेवा, दिव्य प्रेमा भक्ति। अन्याभिलाषिता शून्यम, ठीक है, आपको अभिलाषा कोई नहीं है। ज्ञान कर्म अनावृतम, उसका आप ज्ञान और कर्म दोनों से आवृत ढका नहीं होता है, उसकी कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। चलिए, आप ज्ञान कर्म का मतलब क्या है, कि आप ज्ञान नहीं प्राप्त करते हैं। कर्म का मतलब क्या है, आप कर्म नहीं करते हैं। आवृत होना क्या है, अन्याभिलाषिता शून्य, मेरी अन्य कोई अभिलाषा नहीं है। कर्म का मतलब आ रहा है यहां पर सकाम कर्म से, कि मैं किसी भी प्रकार की कामना नहीं करता हूं, मीन्स ऑल माई एक्टिविटीज हैव टू बी निष्काम। और निष्काम भी कैसा, निष्काम कर्म योग, कि निष्काम कर्म के द्वारा अपने आप को भगवान से युक्त करना, जोड़ना। निष्काम कर्म के अंदर ऐसे भी कर्म आते हैं जहां आपने भगवान से अपने आप को नहीं जोड़ा है, परंतु कामना रहित कार्य किया है। आपने किसी को खाना खिला दिया, भूखे को खाना खिला दिया, मांगने वाले को पैसा दे दिया, कपड़ा दे दिया, कुछ दे दिया, आपने उससे कोई कामना नहीं करी, वो भी निष्काम है। परंतु उस निष्काम से पुण्य फल मिलेगा, फल भोगना पड़ेगा, उसके बगैर गुजारा नहीं है। परंतु आपको चाहिए निष्काम कर्म योग, कि आपको निष्काम भाव से कर्म करना है और उस कर्म के द्वारा अपने आप को भगवान से जोड़ना है, अर्थात भगवान से युक्त किया हुआ कर्म ही करना है, दूसरा कोई कर्म नहीं करना है, परंतु भाव निष्काम होना चाहिए। तो मेरी अन्य कोई अभिलाषा नहीं। जब व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है, ज्ञान के मार्ग पर चल देता है, तो ज्ञान में अपने आप में उसका अहंकार आ जाता है, कि हाँ मैं बहुत ज्ञानी हूं, मुझे बहुत ज्ञान है, आई एम वेरी नॉलेजफुल। और ज्ञान प्राप्त करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, परंतु वो प्रत्यक्ष जो प्रैक्टिकल सेवा है, भक्ति है, उसके अंदर नहीं लगता। यहां भी जो है प्रभुपाद जी 8वें अध्याय के 13वें श्लोक के परपट में लिखते हैं कि जो ज्ञानी है उनको क्या उपलब्ध होता है, ब्रह्म ज्योति। वो वैकुंठ नहीं जा सकते, भगवान के धाम गोलोक वृंदावन नहीं जा सकते, उनका जो अल्टीमेट डेस्टिनेशन, अल्टीमेट एंड है, वो ब्रह्म ज्योति है, उससे पार नहीं जा सकते। तो भगवान की सेवा के प्रति मेरी कामना होनी चाहिए, किसी भी कीमत पे मैं कोई और अभिलाषा न रखूं। अब इस सारा जो दिव्य प्रेमा भक्ति है, हम लोग दिव्य प्रेमा भक्ति करते हैं, सो उस दिव्य प्रेमा भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हम दिव्यता के स्टेज पर नहीं पहुंचे हम लोग, अभी हमारी भक्ति है, प्रेमा भक्ति और भक्ति भी 50-50 है, अभी 100% प्रेमा भक्ति भी नहीं हुई। बट व्हाट अबाउट दिव्य प्रेमा भक्ति। एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन उठता है कई बार, शायद हो सकता है कि आज लोगों को बड़ा चोट सी पहुंचे, बट फैक्ट्स आर फैक्ट्स, वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम लोग भगवान को भोग लगाते हैं, हमारे मन में भोग लगाते वक्त भाव क्या रहता है, व्हाट इज दी होल भाव, क्या रहता है भाव हमारे मन के अंदर। سب لوگ لگاتے ہیں, ایوری بڈی از ڈوئنگ اٹ. یہاں بھی جب بھی مندر میں آتے ہیں سب آہستہ آہستہ سیکھ جاتے ہیں, ہر وقت بھگوان کو بھوک لگا رہا ہے. بھگوان بڑی سندر بات کہتے ہیں نویں ادھیائے کے 26 شلوک میں. کیا کہہ رہے ہیں؟ پترم پشپم پلم تویم یہ میں بھکتیا پرچھتی تدہم بھکتی اپرتھم اشنامی پرت آتمنا. ہم نے پہلے چار شبد پڑھے, پہلے پہلا لائن پڑھی پترم پشپم فلم تویم یہ میں بھکتیا پرچھتی. بھگوان کو پتر دے دو, پشپ دے دو, پھل دے دو, جل دے دو, بھگوان اسے سویکار کر لیتے ہیں. ہم تو بھگوان کو 56 بھوگ کھلا رہے ہیں, جب بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے. پر بھگوان جو ہے یہ جو ریفرنس ٹو کنٹیکسٹ چل رہا ہے کیا ہے, واٹ از دس, کس کے لیے یہ شبد استعمال ہوا ہے, فار وچ کائنڈ آف ڈیووٹیز, کن بھکتوں کے لیے, کن ڈیووٹیز کے لیے ان شبدوں کا پریوگ کیا گیا ہے, بھگوان کیا ہائی لائٹ کر رہے ہیں, کیا بتا رہے ہیں. اس سے پہلے آ جاؤ, اس سے پہلے میں جاؤ, اس سے پہلے میں جاؤ. ہاں انن چنتو ینتو مام یہ جنا پریوپاستے تیشام نتیہ بھکتا نام یوگ شیمم وہامی اہم. ان بھکتوں کے لیے چرچا ہوئی, ان بھکتوں کے کانٹینویشن, اسی کے ایک ریفرنس ٹو کنٹیکس چرچا چل رہی ہے. کنتو جو لوگ انن्य بھاو سے میرے دیو سوروپ کا چنتن کرتے ہیں اور میرے دیو سوروپ کا دھیان کرتے ہوئے نرنتر میری پوجا کرتے ہیں, ان کی جو آوشکتائیں ہوتی ہیں انہیں میں پورا کرتا ہوں. ستت کیرتینتو مام انن्य چیتا ستم یو, مطلب آپ لے کے چلیں گے کہ ہر جگہ بھگوان نے جو ایک چیز ہائی لائٹ کری ہے وہ ہے کی کیول میں. ستم کیرت ینتو مام کیول میں انن چیتا ستم یو مام سمرتی نتشہ, کیول میں. اور یہاں بھی کیا کہہ رہے ہیں, انن چنتو ینتو مام کی کیول میں, مطلب جو کیول میرے انن سوروپ کا, میرے جو دیو سوروپ ہے اس کا انن بھاؤ سے چنتن کرتے ہیں, مطلب ان کی چیتنا میں, ان کے چنتن میں میرے سوائے اور کوئی نہیں آتا. ان بھکتوں کی چرچا ہو رہی ہے, پر دوز ڈیووٹیز, ان کی جو آوشکتائیں ہوتی ہیں انہیں میں پورن کرتا ہوں اور جو کچھ ان کے پاس ہے اس کی میں رکشا کرتا ہوں. اب یہاں جو انن جس کی چرچا ہو رہی ہے, انن کیا ہے, واٹ از دیٹ انن, ان انیہ مطلب اور کوئی نہیں, کون, میں جو شام سندر سوروپ میں تیرے سامنے رتھ پر وراجمان ہوں اس کی یا اس کے سوروپوں کی, مطلب تیرے چنتن کا. اگر تو سوچتا ہے نا بھگوان نراکار ہیں تب بھی گاڑی نہیں چلنے والی ہے, نہیں چلنے والی. تو نے اگر یہ سوچ لیا کہ سب بھگوان ہیں تب بھی گاڑی نہیں چلنے والی. اٹ ہیز ٹو بی کرسٹل کلیئر کہ انن्य کا مطلب ہے کہ آپ نے سنسار کے جتنے بھوگ ولاس ہیں سمست بھوگوں سے ہٹ کر اور کیول بھگوان کے اندر اٹل اور اچل پریم رکھنا. اٹل کا مطلب کیا ہے, نہ ٹلنے والا. اچل مطلب ویور نہیں کرنا ہے. ویور کیسے ہوتا ہے, پرستھتی انکول ہو یا پرستھتی پرتیکول ہو, ان اینی گیون سرکمسٹانسز, جسے کہتے ہیں کنڈیشنز اپلائی, ان اینی گیون سرکمسٹانسز तेरा मन मेरे चरण कमलों से विचलित नहीं होना चाहिए। कोई नहीं है चलो कर लेंगे नहीं करेंगे अच्छा कोई बात नहीं तो इनको भी कर लेते हैं इनको भी कर लेते हैं दोनों को कर लेते हैं, हमने भगवान को छोड़ा थोड़ा है, हमने इन्हें और पकड़ लिया है, यही तो कर रहे हैं ना। सोचते हैं कि हमने भगवान को छोड़ा थोड़ा है, हमने एक इनको और पकड़ लिया है, एक और एडिशन करने में क्या जा रहा है, क्या नुकसान हो रहा है। नो थॉट्स, कोई विचार नहीं, कोई सोच नहीं, कोई चिंतन नहीं, केवल एक ही है कि भगवान ही परम गति है, भगवान ही परम आश्रय है और भगवान ही परम प्रेमास्पद है, परम प्रेम के अधिकारी केवल भगवान है और कुछ नहीं। मुझे उनके प्रति प्रेम प्रकट करना है और किसी के प्रति नहीं। अनंत चेता की जब बात आती है तो सिंपल सी बात है कि मेरे चिंतन में, यहां भी आ रहा है अनन्य चिंतयंत, मेरे चिंतन में मतलब भगवान के सिवाय और कोई नहीं होना चाहिए। अर्थ क्या है कि भक्ति अव्याभिचारिणी चाहिए, व्याभिचारिणी नहीं, चिंतन अव्याभिचारिणी चाहिए, व्याभिचारी नहीं। तो व्याभिचार क्या होता है, व्याभिचार किसे कहते हैं, साधारण भाषा में बात करते हैं कि जब कोई स्त्री किसी पर पुरुष से संबंध बनाती है तो व्याभिचारिणी कहलाती है, और जब कोई पुरुष किसी पर स्त्री से संबंध बनाता है तो व्याभिचारी कहलाता है। अब इसको जो है एनालाइज करेंगे तो मतलब जो अपना है उसको छोड़कर दूसरे के साथ संबंध बनाना व्याभिचार कहलाता। अपना है, जो अपना है उसको छोड़कर दूसरे के साथ संबंध बनाना व्याभिचार कहलाता। मैं एज ए आत्मा, एज ए सोल, एज ए रूह अविनाशी हूं और मेरा संबंध किसके साथ है, जिसका मैं अंश हूं अर्थात भगवान, और भगवान भी अविनाशी हैं। मेरा अपना कौन है, केवल भगवान है। तो अगर मैं भगवान को छोड़कर किसी और के साथ संबंध बनाता हूं तो मैं व्याभिचारी हूं। वो और में मेरा शरीर भी है, और में संसार भी है, नातेदार रिश्तेदार संबंधीगण मित्र संबंध, ठीक है भौतिक संसार में जितना किसी के साथ संबंध चाहिए उतना निभाना है, परंतु 100% उसमें अपने आप को इनग्रॉस नहीं कर देना है। आपका समर्पण जो है उस संबंध के प्रति ना होकर केवल भगवान के प्रति होना चाहिए। दैट आर्ट यू हैव टू लर्न। तो मेरा किसी और से संबंध नहीं है, मतलब मेरे चिंतन में केवल भगवान है और कोई नहीं है, ये उन भक्तों की चर्चा हो रही है। अनन्यता का मतलब क्या है कि मैंने अपने आप को संसार से विमुख कर लिया है, मतलब अब मैं संसार में इंटरेस्टेड नहीं हूं। और चिंतयंतों का मतलब क्या है कि मैं भगवान के सम्मुख हो गया हूं, मेरे चिंतन में अब केवल भगवान है, मुझे उनके सिवाय और कुछ सूझता नहीं। जब हम कहते हैं कि भगवान कहते हैं योग क्षेमम वहामी अहम, मैं योग और क्षेम का वहन करता हूं, करवाता नहीं हूं, आई डू इट माई सेल्फ, मैं स्वयं करता हूं, मैं किसी से करवाता नहीं हूं। अब यहां पे आती है कि योग, योग का मतलब क्या होता है, जोड़ना, जोड़ना। यहां किस योग की चर्चा हो रही है कि तुम्हारे लिए, तुम्हारी भक्ति के लिए जो वस्तु आवश्यक है, जो प्रोसेस आवश्यक है, वो मैं तुम्हारे साथ जोड़ देता हूं। अर्थात जो चीज, जो वस्तु तुम्हें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है, वो मैं तुम्हें, जो तुम्हारे लिए अप्राप्त थी, तुम्हारे को अवेलेबल नहीं थी, वो मैं तुम्हें प्राप्त करा देता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, डिवोटी एसोसिएशन, तो मैं तुम्हें अवेलेबल करा देता हूं, भक्तों का संग करा देता हूं तुम्हें। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक क्या है, श्रवण, कथा सुनने के माध्यम अरेंज कर देता हूं। कीर्तन, प्रवचन सुनना, प्रवचन करना, कीर्तन करना, जप करना वगैरह वगैरह, सारे कार्य तुमको मैं उपलब्ध करा देता हूं। मतलब तुम्हारी भक्ति के लिए जो जो वस्तुएं आवश्यक हैं उनको मैं करा देता हूं, परंतु जो वस्तुएं आवश्यक नहीं हैं वो मैं अवेलेबल नहीं कराता। क्षेमम, योग का मतलब हो गया कि जो वस्तुएं भक्ति में आवश्यक हैं भगवान से संबंध बन रहा है। अक्षेमम का मतलब क्या है? रक्षा करना। इसमें दो सिचुएशन आती हैं, रक्षा करना या रक्षा न करना। मैं किन वस्तुओं की रक्षा नहीं करता, मतलब जो तुमसे छीन लेता हूं, छीन लेता हूं, अकिंचन बना देता हूं, जो आपकी भक्ति में आवश्यक नहीं है, पर किन की रक्षा करता हूं? जो आपकी भक्ति में आवश्यक, जो जरूरी है, जो भक्ति के मार्ग में चलने के लिए नेसेसरी है, आवश्यक है, उन्हें मैं अवेलेबल करा देता हूं। मतलब मैं यहां पर जब क्षेम वहन करता हूं तो तुम्हारे हित की बात करता हूं, तुम्हारे कल्याण की बात करता हूं, सो दैट यू गेट बेनिफिटेड। अब योग के द्वारा जो है भगवान भक्त के साथ अपने संबंध को दृढ़ करते हैं, और क्षेम के द्वारा भगवान जो है अपने भक्त के कल्याण की कामना करते हैं। यस, समथिंग गुड टू हिम। अब आती है चार जो हम आज कर रहे थे, 26वां श्लोक, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये मे भक्त्या प्रेक्षति। ये किसके लिए चर्चा हो रही है? हमने अभी बात करी, ये चर्चा हो रही है उन भक्तों के लिए जिनका भगवान में अनन्य चिंतन है। ध्यान से पढ़िएगा, इसमें एक दो बार शब्द इस्तेमाल हुआ है, यो मे भक्त्या प्रेक्षति। भक्त्या, भक्ति ऊपर भी आया है भक्ति पूर्वक, और नीचे भी आया है भक्ति उपरतम, भक्ति भाव से अर्पित। दो जगह भक्ति शब्द इस्तेमाल हुआ कि वो अनन्य चिंतो यंतो में आया है नित्य अभियुक्ता नाम, मतलब वो नित्य मेरे से योग करने का प्रयत्न कर रहा है, इस डिजायरस, वो मेरे से मेरे चिंतन करने का इच्छुक है, मेरे चिंतन में प्रयास करने का इच्छुक है, वो मेरे से नित्य युक्त होने का इच्छुक है, जुड़ा हुआ है मेरे से, उसने अपना संबंध मेरे साथ स्थापित कर लिया है। जब हम बात करते हैं कृष्ण की भक्ति करते हो, हां जी कृष्ण की भी भक्ति करता हूं, वो लेवल नहीं है। कृष्ण की भक्ति करते हो, हां जी कृष्ण की ही भक्ति करता हूं, वो ही वाला लेवल है। तो यहां जो है उस भक्त की बात हो रही है, क्योंकि पहले श्लोक के अंदर देवी देवताओं के बारे में चर्चा हुई है, भूत प्रेतों के बारे में चर्चा हुई है कि जो मेरी सेवा करते हैं, मेरी पूजा करते हैं, मेरे दिव्य प्रेमा भक्ति करते हैं, वो मेरे धाम में आते हैं। अब भगवान कहते हैं कि ऐसा भक्त जिसके मन के अंदर भौतिक संसार के प्रति कोई भी कामना नहीं है, जो सब कुछ मेरे को अर्पण कर देता, जो तपस्या के प्लेटफॉर्म पे परफेक्शन ले लेता है, वो क्या है? व्हाट इज दैट? देखिए, जब भी हम कोई वस्तु जो है, जैसे हम सिंपल भाषा में बात करें तो एक यज्ञ में आहुति डालते हैं, जब एक अग्नि के अंदर आहुति डाली जाती है तो वस्तु हमने अग्नि को अर्पित कर दी, अर्थात वो हमने जो है यज्ञ कर दिया, वी हैव परफॉर्म्ड यज्ञ। अगर हम वही वस्तु जो है किसी दूसरे को दे देते हैं तो क्या हो जाता है? दान, दान दे दिया आपको, दान में दान रूप चला गया। अगर एक वस्तु जो है जो हमें अच्छी लगती है, जो हमारे पास अवेलेबल है, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु भक्ति में इस्तेमाल नहीं हो रही, और हम बड़ा इंद्र निग्रह करके, संयम करके, बहुत ही अपने आप को कंट्रोल करके उस वस्तु को अपने प्रयोग में नहीं लाते, तो तप हो जाता, तपस्या हो जाती। पर अगर हम कोई वस्तु भगवान को प्रेम पूर्वक अर्पित कर देते हैं तो योग हो जाता, अर्थात भगवान से संबंध बन जाता। हमें पत्र पुष्प फल और जल। अब देखिए पत्ते जो हैं, पत्ते पत्तों में जल रहता है, पुष्प फल में भी जल रहता है और फल फल में भी जल रहता है, और चौथी चीज क्या है, जल। अगर सिंपल भाषा में बात करेंगे तो भगवान ने कहा कि मुझे आप जल अर्पित कर दो, हाईएस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ जल चाहिए मेरे को। हम कहते हैं भगवान खाते हैं, पत्र खा लेंगे, पुष्प खा लेंगे, हैं ठीक है, तो कैसे कैसे पत्ते भगवान खाते हैं? आपने आग का पत्ता चढ़ा दिया, खाएंगे क्या, स्वीकार करेंगे? कैसा पत्र लेते हैं, पत्ते कैसे इस्तेमाल करते हैं? आपने दूसरी बात क्या है कि आप देखिएगा, हम पुष्प अर्पित करते हैं और भगवान कैसे पुष्प खाते हैं? जब भगवान भक्त का भाव देखते हैं ना, भक्त का उनके प्रति भाव क्या है, तब वो कैसे खाते हैं? तब उनका ध्यान उस भोग में नहीं होता। भगवान का ध्यान किस में होता है? भाव में। एग्जाम्पल है आपके पास, शबरी के यहां क्या खाया? फल खाए ना। कैसे खाए? क्या देखा, सुच्चा है कि झूठा है, धोया है कि अंधोया है, साफ है कि गंदा है, देखा पहले, ध्यान दिया उस पर? शबरी के जो भाव हैं, शबरी का जो प्रेम है, उसमें भगवान कितने मस्त हुए हैं कि चुपचाप खाए जा रहे। द्रौपदी ने पुकारा कब? जब दुर्वासा मुनि दुर्योधन के कहने पे वन में आए थे, अब हम जो है सब लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे, और अक्षय पात्र में द्रौपदी खा चुकी थी, दुर्योधन ने भेजा ऐसे टाइम पे था। तो भगवान ने क्या खाया? पत्ता। एक पत्ता खाते ही सारे संसार की तृप्ति कर दी, भाग गए। पत्र खाया, पत्र। गजेंद्र ने क्या अर्पित किया भगवान को? क्या दिया? उसके पास को देने के लिए था, पुष्प दिया, अब भगवान ने स्वीकार कर लिया। यस। परंतु भगवान इतने मस्त रहते हैं भक्त के भाव में, भक्त की सेवा से, भक्त के प्रेम में, कि विदुर जी की पत्नी जो है केले के छिलके दे रही है और छिलके खाए जा रहे हैं और केला छोड़े जा रही, केला नहीं मिल रहा उनको। क्या खाया विदुर जी के यहां? केले खाए कि उनके छिलके खाए? केला नहीं मिला, छिलके खा गए। शबरी के यहां जूठे बेर खा गए। और अंती देव ने अंत के अंदर जब भगवान चंडाल रूप में प्रकट होते हैं तो उनको जल अर्पण किया है, तो भगवान जल पीने के बाद साक्षात प्रकट हो गए। भक्त का जो प्लेटफॉर्म है, जो लेवल है, वो लेवल होना चाहिए कि भगवान उसको स्वीकार कर। भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। किससे स्वीकार नहीं करते हैं? इस श्लोक का आखिरी शब्द पढ़िएगा, प्रत आत्मनः शुद्ध चेतना वाला, जिसकी चेतना अभी संसार में है, जिसकी चेतना में ईर्ष्या है, द्वेष है, जलन है, मद है, मत्सर है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, जिसकी चेतना दूषित है, उसका भगवान भोग स्वीकार नहीं करते। हम लगाते जरूर हैं, हमारी भावना है कि भगवान ने स्वीकार कर लिया है, परंतु भगवान किसका स्वीकार करते हैं? शुद्ध हृदय वाले का। यहां जो है भगवान स्पष्ट लिख रहे हैं, प्रभुपाद जी स्पष्ट लिख रहे हैं, कृष्ण को केवल प्रेमा भक्ति चाहिए और कुछ भी नहीं। कृष्ण तो अपने शुद्ध भक्त से छोटा सा फूल तक ग्रहण करते हैं, किंतु अभक्त से वे कोई भेंट नहीं चाहते। उन्हें किसी से कुछ नहीं चाहिए क्योंकि वे आत्मतुष्ट हैं, तो भी वे अपने भक्त की भेंट प्रेम तथा स्नेह के विनिमय में स्वीकार करते हैं। आप भगवान को भोग लगाते हैं जब, तो भोग लगाने में बड़ा ही हमको अपने आप को अपलिफ्ट करना पड़ेगा, ऊंचा उठाना पड़ेगा, ऊंचा बढ़ाना पड़ेगा कि हम भगवान को किस प्रकार से भोग लगाएं। हमारा कोई पर्सनल मोटिव नहीं होना चाहिए, नो पर्सनल मोटिव। अगर पर्सनल मोटिव है तो भगवान ने स्वीकार नहीं करना। मतलब क्या हो गया कि मैं भगवान के सामने कामना लेकर जा रहा हूं और भगवान को भोग लगा रहा हूं, मिठाई का डिब्बा लेके आया और यह कामना मैंने कर दी, तो वो मिठाई स्वीकार अल्टीमेटली नहीं होने वाली। मेरे को लगता है कि भगवान ने ले लिया। देयर शुड बी नो पर्सनल मोटिव, इट हैज टू बी 100% निष्काम। निष्काम नहीं है तो स्वीकार नहीं। प्रतात्मना का दूसरा अर्थ है कि विद ए प्योर स्टेट ऑफ माइंड, बोले विद्याभूषण लिखते हैं विद ए प्योर स्टेट ऑफ माइंड, कि आपका मन जो है बिल्कुल एकदम शुद्ध होना चाहिए। आपका शरीर और मन दोनों शुद्ध होने चाहिए। इसीलिए देखते हैं कि वेन द लेडीज आर इन मेंस्ट्रुअल पीरियड, जब उनका जो है पीरियड्स होते हैं या उनका जो मासिक साइकिल होता है, उन दोनों में भगवान भोग स्वीकार नहीं करते, बिकॉज दे आर कंसिडर्ड इम्प्योर। अब आता है प्रश्न कि थोड़ा सा एडवांस होकर चलते हैं, हल्का सा। अब ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हमने कहा कि भगवान पत्र पुष्प फल और जल, कहते जो मेरा शुद्ध भक्त है उससे मैं पत्र पुष्प फल और जल भी दे देता है तो मैं सेटिस्फाई हो जाता हूं। इवन इफ ही ऑफर्स मी पत्र पुष्प फल या जल देता है तो मैं उससे सेटिस्फाई हो जाता हूं। परंतु आपको जो है पत्र में क्या क्या आप ऑफर करते हैं, क्या क्या देते हैं पत्र के अंदर? अजी मैं पत्र मतलब पत्ते, पत्ते मींस मैं धनिया भी खिलाता हूं, पुदीना भी खिलाता हूं, साग भी खिलाता हूं, सरसों भी खिलाता हूं, पालक भी खिलाता हूं, वगैरह वगैरह वगैरह। मैं जो है पत्र भगवान को अर्पित कर देता हूं। और कौन से पत्ते अर्पित कर सकता है? विच अदर लीव्स? तुलसी महारानी कर दी, और एनीथिंग एल्स? सुनिए, पंद्रहवें अध्याय के पहले श्लोक के अंदर चर्चा होती है छंदासी यस्य पर्णानी, मतलब जो भौतिक संसार के अंदर जो एक वृक्ष है उसके पत्ते क्या हैं? वेदों के छंद के रूप में। तो कहते हैं कि अगर आप जो है उन पत्तों को, कौन से पत्ते? जो वेदों का ज्ञान है, वो ज्ञान रूपी पत्ते, जो वेदों के ज्ञान रूपी पत्ते हैं, अगर आप उनको जो है, जैसे भागवतम है, भगवत गीता है, ईशोपनिषद है, अर्थ ग्रंथ है, अगर आप इनको पढ़ते हैं, इनको सुनते हैं, इनको समझते हैं, इनका ज्ञान बांटते हैं, तो वो भी जो है भगवान को पत्र अर्पित करने के समान, वो भी भगवान को पत्र अर्पित करने के समान है। अर्थात ये जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं इनको शास्त्र में पत्तों की संज्ञा दी गई है। अब भगवान उसको प्रेम सहित प्रेम पूर्वक स्वीकार करते हैं। अब आता है पुष्प। हम लोग जो है गुलाब देते हैं, कमल देते हैं, मोतिया देते हैं, मोगरा देते हैं, रजनीगंधा देते हैं, अलग अलग वैरायटी के फूल देते हैं। हमने जो है पंचरात्र टेक्स्ट के अंदर एक श्लोक है, पंचरात्र में एक श्लोक है, अहिंसा प्रथमं पुष्पं पुष्पं इंद्रिय निग्रह सर्वभूता दया पुष्पं क्षमा पुष्पं विशेषतः ज्ञानं पुष्पं तपः पुष्पं ध्यानं पुष्पं तथैव च सत्यं अशिवैधं पुष्पं विष्णोः प्रीतिकरं भवेत्। कि मेरा जो आठ प्रकार के फूलों की चर्चा हुई है यहां पर, मेटाफोर मतलब एक अलंकार दिया गया है, आठ प्रकार के फूलों की चर्चा हो रही है। उन पुष्पों उन फलों को हम जो है उन पुष्पों को हम जो है भगवान को अर्पित कर सकते हैं। पहला है नॉन वायलेंस, अहिंसा। हमें किसी भी जीव के प्रति हिंसा नहीं करनी चाहिए। अगर हम किसी भी जीव के प्रति नहीं हिंसा करते हैं तो भगवान के चरणों में हमारा एक फूल अर्पित हो। दूसरा, सेंस कंट्रोल, इंद्रिय निग्रह, अपने मन को अपनी इंद्रियों को वश में करना दूसरा पुष्प हो गया। तीसरा, कंपैशन टू ऑल लिविंग बीइंग्स, प्रत्येक जीव के प्रति हमारे हृदय में करुणा भी बचती है, करुणा विराजमान है। ये पुष्प जो है हम भगवान को अर्पित कर रहे हैं। चौथा, टॉलरेंस, सहिष्णुता, पेशेंस, धैर्य। अगर हम धैर्य रखते हैं, टॉलरेंस रखते हैं, तो ये पुष्प हम भगवान को अर्पित कर रहे हैं। पांचवा, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। अगर हम भगवान का दिव्य ज्ञान प्राप्त करते हैं और फिर दिव्य ज्ञान को बांटते हैं, तो हम जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जैसे दिव्य ज्ञान एक तरीका है दिव्य ज्ञान को बांटने का, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो हम जो है भगवान के चरणों में ट्रांसेंडेंटल नॉलेज का पुष्प अर्पित कर रहे हैं। छठा पुष्प है ऑस्टेरिटी, तपस्या, तप करना। तप करने का अर्थ क्या है कि जैसे सोने को बहुत तेज अग्नि में तपाया जाता है तो वो कुंदन बन के निकलता है। तपाना मतलब अपने आप को प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियों में डलते हुए देखकर भी विचलित ना होना। और जैसे मैंने पहले बताया कि वस्तुएं उपलब्ध हैं परंतु आप संयम से उनको न इस्तेमाल कर रहे, आप संयम कर रहे, इसको इस्तेमाल नहीं करना, बिकॉज ये भक्ति में साधक ने भक्ति में सपोर्ट नहीं कर रही, संयम करना उसके ऊपर, तब आप तपस्या है। देखिए जब आप करते हैं श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, श्रद्धा से निष्ठा पहुंचने में पहले स्टेप से लेके पांचवें स्टेप तक पहुंचने में भजन क्रिया तीसरा स्टेप है और इसके ऊपर है तपस्या। भजन क्रिया भी तपस्या है पर तपस्या का जो हायर प्लेटफॉर्म है वो क्या है, अनर्थ निवृत्ति, जो छूटती में। जिस दिन आप अनर्थ निवृत्ति में परफेक्शन ले लेते हो, परफेक्ट हो जाते हो, तो आप जो है ऑटोमेटिकली निष्ठा के प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाते हो। तो आपको तपस्या करनी है। सातवां फूल है इसके अंदर मेडिटेशन ऑन द लॉर्ड, भगवान के प्रति अपने मन को समर्पित कर देना। मन आपका भगवान के चरणारविंदों में लग जाए, इसके अलावा आपको और कुछ चाहिए ही नहीं। और आठवां फूल जो है भगवान को जो अर्पित किया जाता है, दैट इज ट्रुथ। ट्रुथ का मतलब है शास्त्र के अनुसार ही बोलना और शास्त्र के अनुसार ही आचरण करना, उसी के अनुसार व्यवहार रखना, उसी के अनुसार अपना एटीट्यूड बनाना। तो अगर आपका आचरण जो है, जैसे आचरण की चर्चा हो रही है भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 54वें श्लोक से लेके और 71वें श्लोक तक कि आपका आचरण कैसा होना चाहिए, तो वो जो है भक्त जो है प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी विचलित नहीं होता, भक्ति में लगा रहता है। अगर आप उस स्टेज पे ले आते हो तो आप भगवान को आठवां फूल अर्पित कर रहे हो। ये जो फूल है ये भगवान को बहुत प्रिय है। इसके बाद चर्चा आती है फलों की कि हम किस प्रकार के फल जो है भगवान को अर्पित कर सकते हैं। सेब, संतरा, केला, आड़ू, चीकू, एट फ्लावर्स। अब किस तरह के फल, तो भगवान क्या कहते हैं कि आप अपने कर्म के फलों को मेरे को समर्पित करो। दैट इज द हाईएस्ट प्लेटफॉर्म। क्या होगा कि आप जो है अकर्म ही कर रहे हैं, कर्म कर नहीं रहे हैं, आपके सर का सब कार्य जो है भगवान के लिए हैं, भगवान के प्रति हैं। इससे बड़ा फल और कोई भगवान को अर्पित हो नहीं सकता क्योंकि आपने अपने कर्म के फलों को भगवान को अर्पित कर दिया। और जितने भी वैदिक शास्त्र हैं उन वैदिक शास्त्रों में जितनी भी ज्ञान उपलब्ध है उनका मैच्योर्ड राइपंड फ्रूट क्या है। श्रीमद् भागवतम, तो जब जो है भागवतम को आप पढ़ते हो, उसके ज्ञान को बांटते हो, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो, इसका मतलब है आप भगवान को फल अर्पित कर रहे हैं। अब आता है इसके बाद जल, जल अर्पित करना। दूध दे दिया, फ्रूट जूस दे दिए, लिक्विड्स दे दिए, तरल पदार्थ दे दिए, तो हमने भगवान को जल अर्पित कर दिया। भगवान कैसे जल से प्रसन्न होते हैं? व्हाट इज द काइंड ऑफ वाटर? बिस्लेरी, शुद्ध फिल्टर्ड, आरओ से फिल्टर्ड पानी वगैरह वगैरह वगैरह। भगवान को कैसा जल है जो सम्मोहित कर सकता है, जिसको भगवान स्वीकार करते हैं, विच इज द हाइएस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ जल। तो भगवान कहते हैं, यहां कहते हैं वैष्णव आचार्य, कि भगवान जो है सबके हृदय को शुद्ध करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि शुद्ध करें। शुद्ध करने के बाद जब वो भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, धाम का वर्णन सुने या वर्णन करे, तो उसकी आंखों से अश्रु बहने चाहिए, मुझे वो जल चाहिए। दैट इज द वॉटर आई वॉन्ट। अब आपका हृदय शुद्ध हुआ है, क्योंकि भगवान के नाम में रुचि, भगवान के नाम में आपको रुचि आनी शुरू हो गई है। अब आप जो है भगवान का नाम सुनते हैं, भगवान की लीला सुनते हैं, भगवान के गुण रूप धाम की चर्चा करते हैं, उनको सुनते हैं या उनको बताते हैं, तो आपका गला रुंध जाता है, आप भाव में आ जाते हो, आपके आंसू बहने लगते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरे नाम का जप करते हुए क्या होना चाहिए, एज इफ यू एज ए चाइल्ड क्राइज फॉर मदर, यू शुड क्राई फॉर मी। आपकी पुकार, आपकी क्राई कैसे होनी चाहिए, जैसे एक नादान बच्चा जो है जिसको कोई ज्ञान नहीं है अपनी मां को पुकारता है और मां के लिए आंसू बहाता है, ऐसे आपको मेरे लिए आंसू बहाने हैं, मेरे नाम गुण रूप लीला धाम का वर्णन करते हुए, चर्चा करते हुए। परंतु इस भौतिक संसार के अंदर लोग झूठे आंसू भी बहाते, हृदय शुद्ध नहीं है, निष्काम भाव नहीं है, सकाम भाव है। मंदिर में खड़े हाथ पकड़ेंगे या पकड़ेंगे पकड़ेंगे, यूं करेंगे यूं करेंगे, बहुत सारे नाटक करेंगे और बहुत सारे आंसू बहाएंगे, भगवान से मांग लेंगे कुछ, तुरंत हाथ के हाथ मांग लेंगे। ऐसे लोगों का मुझे जल नहीं चाहिए, मैं वही जल चाहता हूं आपके अश्रुओं का जो मेरे प्रति भाव में निकला है, जो मेरा नाम रूप गुण लीला धाम का वर्णन करते हुए सुनते हुए आपकी आंखों से आंसू आते हैं, मुझे वो चाहिए। तो भगवान ने जो है अपनी भक्ति के लिए, अपने को ऑफर करने के लिए आपके पास बड़ी सिंपल सिंपल चीजें दी हैं। क्या हम उन्हें करते हैं? अगर हम भगवान की सेवा करते हैं अंडर कंपल्शन, ये भोग लगाना है, अंडर कंपल्शन करना है, ये करना है, अंडर कंपल्शन काम हो रहा है, तो भगवान उस सेवा को स्वीकार नहीं करते हैं। सेवा होनी चाहिए स्वाभाविकी, स्वतः है आपके मन के अंदर भगवान के प्रति आकर्षण हो और उस आकर्षण के अनुरूप आप उनको भोग लगा रहे हैं, उस आकर्षण के अनुरूप आप उनकी सेवा कर रहे हैं। उस भगवान के प्रति जब आकर्षण हो जाता है तभी आपकी सेवा जो है सेवा स्वीकार होती है। आप भगवान के प्रति आकर्षित नहीं है परंतु आप सेवा कर रहे हैं तो सेवा स्वीकार नहीं होगी। और जो सेवा भगवान के प्रति आकर्षण के अनुरूप की जाती है, जो सेवा निष्काम भाव से की जाती है, जिस सेवा में आपका कोई मोटिव नहीं है, पर्सनल मोटिव नहीं है, आपकी कोई इच्छा नहीं है, चाहत नहीं है, जिस सेवा के अंदर व्याभिचार नहीं है, वही सेवा, वही भक्ति दिव्य प्रेमा भक्ति कहलाती है। दैट इज दिव्य प्रेममयी सेवा, दैट ब्रिंग्स यू ट्रांसेंडेंटल रिजल्ट्स। दिस हैज टू बी अंडरस्टूड। तो यहां जो है चर्चा कर रहे हैं प्रभुपाद जी बड़े सिंपल शब्दों के अंदर, कि शुद्ध भक्त की यही अभिलाषा रहती है कि भक्तों की संगति में रहकर भगवान तथा उनके दासानुदासों की सेवा करें। क्योंकि भक्ति की बिगिनिंग, जब हम नौ स्टेप्स भक्ति के बोलते हैं, उसकी बिगिनिंग कहां से होती है? उन्हें कहते हैं श्रद्धा से। शब्द क्या यूज करते हैं हम? श्रद्धा से। पर श्रद्धा बनती कैसे है? श्रद्धा कैसे बनी? श्रद्धा बनी भक्तों के संग से। तो बिगिनिंग कहां से होती है? भक्तों के संग से। तो वैष्णवाचार्य लिखते हैं, जब किसी व्यक्ति का भक्तों के साथ संग होता है तो वो श्रद्धा के मार्ग में चलने लगता है। जब श्रद्धा में आता है तो भक्तों से संग करता है, भक्तों का संग होता है श्रद्धा पक्की होती है, फिर श्रद्धा में आता है फिर भक्तों का संग करता है। दिस बिकम्स ए विशियस साइकिल। उस साइकिल के अंदर जो इग्नाइटिंग पॉइंट है, जहां से करंट पैदा होता है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, दैट इज ए डिवोटी एसोसिएशन। जब तक आप किसी भी भक्त का संग नहीं करते, चाहे एक क्षण के लिए हुआ, वो आपको मंदिर में ले आया, भगवान के पास ले आया, भगवान के, आपने फोन पे ही बात करी, फोन पे ही संग हो गया, अरे भाई आज मंदिर चलना है, चल यार रोज पिक्चर जाते आज मंदिर चलेंगे, इवन दैट इज एनफ। भक्त का संग हुआ पहले, तो इग्नाइटिंग पॉइंट क्या था? भक्त का संग। वो लेके गया आपको श्रद्धा पे, और श्रद्धा से फिर आप कहां आए? भक्तों का संग आपका दिन ब दिन बढ़ता चला गया। तो डिवोटी एसोसिएशन के बिना आप दिव्य प्रेमा भक्ति में नहीं जा सकते। बिगिनिंग हैज टू बी डन। बस व्यक्ति सोचे कि मैं कर लूंगा, नहीं होगा। क्यों? भगवान क्या कहते हैं? तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। कि बुद्धि मैं देता हूं, और बुद्धि कब देता हूं? मत चिता मदगत पुराना बोधे अंत परस्परम। जब भक्तगण आपस में मिलते हैं, मेरी चर्चा करते हैं, उनके विचार मेरे में वास करते हैं, मतलब भक्तों का जो संग होता है, भक्तों का जब एसोसिएशन होता है, भक्त जब आपस में मिलते हैं, तब वो भक्ति के प्लेटफॉर्म पे आता है व्यक्ति। और भक्ति के प्लेटफॉर्म पे भी कैसे आता है? सतत युक्ता नाम, हर क्षण मुझसे जुड़ा रहता है, हर क्षण। जब वो हर क्षण मुझसे जुड़ा रहेगा, सतत शब्द जो है निरंतर सतत, ये जो है भगवद गीता में कई जगह इस्तेमाल हुआ है। दिस हैज टू बी अंडरस्टूड कि एक क्षण के लिए भी भगवान का विस्मरण नहीं होना चाहिए। अगर आपको एक क्षण के लिए भी भगवान का विस्मरण होता है तो वो क्षण आपके लिए असहनीय हो जाना चाहिए, असहनीय, इनटॉलरेबल। और क्षण का साइज कितना होता है? शास्त्र बताते हैं कि कमल के पत्ते को जब सुई से छेदा जाता है तो तीन क्षण हो जाते हैं। पहले क्षण में कमल के पत्ते को टच करना, दूसरे क्षण के अंदर कमल के पत्ते के अंदर जाना, और तीसरे क्षण में कमल के पत्ते से बाहर निकल जाना, तीन क्षण हो जाते। इतना भी पीरियड, इतना भी समय भगवान का विस्मरण नहीं होना चाहिए। दैट लेवल हैज टू बी अचीव्ड। हरे कृष्णा। प्रश्न किया है बड़ा सुंदर। मैं उस प्रश्न के बारे में पहले भी कई बार कह चुका हूं, आज फिर मैं, ये सेम क्वेश्चन है, सेम आंसर रहेगा कि अभी हमारा प्लेटफॉर्म क्या है। अजी आज आप क्या खाओगे? अजी आज वो बच्चे को पनीर चाहिए, रास्ते में से लेते आना। वो बच्चा कौन है? आपका बेटा या भगवान? आप क्या खाओगे? मतलब हमारा भाव अभी तक जो है भगवान के प्रति नहीं है, अपने प्रति है। परंतु एक बात याद रखिएगा कि जब आप भगवान की भक्ति में एनग्रॉस हो जाते हो, डूब जाते हो, तो भगवान ये छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं, तब उन्हें नहीं याद रहता कुछ भी। छोटी छोटी बातें जो है ना, वो नहीं याद रहती। अजी ये अब कभी हमने वंशी दास बाबा की कथा सुनी? नहाते नहीं थे, पर भगवान की सेवा, भगवान सब सेवा स्वीकार करते थे उनसे बिना नहाए। आपका भक्ति का प्लेटफॉर्म, आपका लेवल क्या है, इस पे बहुत बातें डिपेंड करती हैं। साधना आवश्यक है, परंतु जब आप भक्ति रसामृत सिंधु बढ़ते हैं तो साधना भक्ति या रागानुगा भक्ति, वैदी भक्ति या रागानुगा भक्ति, दोनों में से किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, कौन सी उच्च है? रागानुगा, बिकॉज आपका तो राग भी अनुराग भी दोनों भगवान के प्रति है, अन्याभिलाषिता शून्य, और कोई अभिलाषा ही नहीं है मेरी। दैट लेवल, वेन दैट लेवल कम्स देन दीज थिंग्स दे डिसअपीयर। जहां तक सवाल यह है, हमने पूछा है लक्षेश्वर, कौन है लक्षेश्वर? चौसठ माला यानी 1,00,000 हरि नाम लेना रोज। एक जगह मैंने पढ़ा था कि जो लक्षेश्वर होता है उसके हाथ से चैतन्य महाप्रभु भोग ग्रहण करते हैं, क्या बाकी भक्तों के हाथ से ग्रहण नहीं करते? देखिए ऐसा है कि अभी आपने एक बात को भुला दिया। क्या भुला दिया है? कि गुरु की वैल्यू क्या है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मृत्यु के बाद अशौच का समय होता है, जिसे सूतक कहते हैं। अशौच मतलब इम्प्योर पीरियड होता है घर वालों के लिए, इम्प्योर पीरियड। नजदीकी रिश्तेदारों के लिए 3 दिन का होता है, मतलब किसी का रिश्तेदार है, जिसके परिवार के लोग हैं उसकी बात नहीं कर रहा, जो उनके रिश्तेदार हैं, चाचा का है, मामा का, इस तरह करके आपके लिए 3 दिन का अशौच है। परंतु जो परिवार के सदस्य हैं उनके लिए, ब्राह्मणों में 10 दिन का है, क्षत्रियों में 12 दिन का है, वैश्यों में 15 दिन का है, शूद्रों में 30 दिन का है। 3 साल पहले हमारे बड़े मंदिर में एक भक्त हैं, अद्वैत कृष्ण, सब जानते होंगे उन्हें, पंचशील मंदिर संभालते हैं, फरीदाबाद मंदिर संभालते हैं, बीबीटी संभालते हैं, गोविंदा स्नैक कॉर्नर संभालते हैं, आईआईटी से पोस्ट ग्रेजुएट हैं और बहुत बड़ा बिजनेस छोड़ के फुल टाइम हो गए। उनके रिलेटिव्स का कार एक्सीडेंट हो गया, फरीदाबाद का फ्लाईओवर नया नया बना था तो ड्राइवर कंट्रोल नहीं कर पाया, गाड़ी टकरा गई और 3 डेथ हो गई एक ही फैमिली की, जो कि दिल्ली में शादी करके वापस जा रहे थे अमेरिका। मेरे को कथा करने के लिए बुलाया गया, मैंने लेक्चर में बोला अशौच का पीरियड है, इस अशौच का जो समय होता है उसके अंदर आपको ग्रंथ नहीं पढ़ने हैं, ठाकुर जी की सेवा नहीं करनी है, मंदिर नहीं जाना है, मतलब देर आर सो मेनी थिंग्स विच यू हैव टू फॉलो। तो लेक्चर के बाद जो है मेरे से कहने लगे, जी सबसे कहने लगे, भाई डॉक्टर साहब ने तो मना किया है कि आपको मंदिर में दर्शन करने नहीं जाना चाहिए, मंदिर के हॉल में ऑडिटोरियम में प्रोग्राम हो रहा है, अब जितने लोग आए हुए हैं वो सब ठाकुर जी के दर्शन करना चाहते हैं, 4:15, 4:30 बजे प्रोग्राम खत्म हुआ है, तो अब ये जो शास्त्र के अनुसार निषेध है, निषेध है, आप नहीं जा सकते दर्शन करने के लिए, बिकॉज यू आर नॉट इन ए प्योर फॉर्म, आप इम्प्योर फॉर्म में हो, बट गुरु महाराज ने सबको परमिट कर दिया। तो यहां गुरु की वैल्यू आती है, समझे जी आप? हमने पढ़ा है, लिखा है, बहुत सारी बातें उस युग के अनुसार थी। जब प्रभुपाद ने कहा 64 माला करनी है, तो अंग्रेज भक्तों ने कहा ये तो हो ही नहीं सकती, तो 32 कर लो, नहीं हो सकता जाओ 16 तो कर ही लो। तो कहने का मतलब यह है कि हमें ये लेवल देखना है कि हमें क्या सैंक्शंस मिली हैं, और सैंक्शंस जो है हमें 100% जब कॉन्फ्लिक्ट होता है कि हमने कोई चीज पढ़ी है तो हमें देखना है कि जो हमने पढ़ा है उसमें हमारे गुरु का आदेश क्या है, व्हाट शुड बी फॉलो। क्योंकि जो पढ़ा है उसको पूरा करने में सब लोग सक्षम नहीं है, देयर आर सो मेनी रेस्ट्रिक्शंस। अगर आप रिस्ट्रिक्शंस की बात करेंगे तो आप कुर्सी पर बैठ के कथा नहीं सुन सकते, यू हैव टू सिट डाउन। पर यहां गुरु परमिट करते हैं। महाराज ने हमसे कहा भैया जो नहीं बैठ सकते सब कुर्सी लगाओ सबके लिए, लगा ना। देर इज ए डेफिनेट कि गुरु जो गुरु मुख पद्म वाक्य, गुरु ने जो वाक्य कह दिया है उसकी वैल्यू है, वो नियमों को ब्रेक करवा सकते हैं, वो नियमों को ब्रेक करा सकते हैं। जब तक कथा समाप्त ना हो नो बडी स्टार्ट टू मूव, किसी को हिलने की इजाजत नहीं। शास्त्र ये कहता है, अब कभी अजमा के देखिएगा, मैं सुबह आता हूं ना वहीं दंडवत करता हूं, कभी आगे नहीं आता, वहीं करूंगा सामने बाहर, नेवर कम फ्रॉम, क्योंकि जो भक्त कथा सुन रहे हैं उनको डिस्टर्ब करने का मेरा अधिकार नहीं, डिस्टेंस है। वन हैज टू लर्न दीज वैष्णव एटिकेट्स। मैं प्रभुपाद जी को प्रणाम भी करता हूं, जगह ना हो तो बाहर पीछे मेज लगा हुआ वहीं से प्रणाम कर देता हूं। हम जब वैष्णव एटिकेट्स की चर्चा करते हैं उसमें गुरु के स्थान की चर्चा करते हैं, देन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमने पढ़ा बहुत है, लिखा बहुत है, उस युग के लिए था भाई, उस युग के लिए था। आज के युग में सिचुएशंस डिफरेंट है। आज अगर मान लीजिए एक सन्यासी है वो चल नहीं पा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, टोकरे में लेके जाएंगे उनको, आप व्हील चेयर है आपके पास, व्हील चेयर में बिठा लेंगे, स्ट्रेचर है, ट्रॉली है, देयर सो मेनी फैसिलिटीज अवेलेबल। नहीं नहीं, अरे बाबा रे, वहां तो बाबा जी को जो है चैतन्य महाप्रभु का स्थान ढूंढने के लिए टोकरे में लेके गए थे तो चल नहीं पाते थे, तो यहां भी गुरु नहीं चल पा रहा है तो टोकरा, अरे भैया टोकरा उठाने वाला बैठ जाएगा नीचे, उसके ताकत नहीं होगी। थिंग्स चेंज, यू नो, टाइम समय काल के अनुसार जो है बदलाव आता है, और हमें उस बदलाव को गुरु के आदेश के अनुसार स्वीकार करना, वी हैव टू फॉलो इट। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, तो आगे आ जाओ, जोर से बोलो। यस, भक्ति का मतलब क्या है, सुकृति का मतलब क्या है, उसने पिछले जन्म में साधु संग किया हुआ, यही भगवान कहते हैं ना, नेहा विक्रम नाश होस्ति पत्तवायो न विद्यते, अर्थात कभी इसका नाश नहीं होता। जो उसने साधु संग पिछले जन्मों में किया हुआ है, जहां भक्ति छूटी है वहीं से अब आरंभ है, तो साधु संग, हम साधु संग की बात करते हैं तो वी हैव टू एक्सेप्ट साधु संग पिछले जन्म का भी साधु संग काउंट हो रहा है, उसी वजह से सुकृतियां हैं, उसी वजह से इस जन्म के अंदर उसको जो है लाभ मिल रहा है इस बात का। यू सी,